मैं हमारी यारानी दोजख क्या बात बताऊँ आपको, बस लोगों के नाम बीच में आते रहते हैं।
दो साल से कोई बेहतर रिजल्ट नहीं आ सका, इसलिए उनको ट्राई किया गया है।
बेचारे फंसे गए हैं, वो है ज़हीर खान और राहुल द्रविड़।
One serve away from the title.
An ace from Federer. Champion for an eighth time.
शर्जील खान और खालिद लतीफ फैसले के मुंतजर। पाकिस्तानी हॉकी टीम नए कोचेस के हवाले, लेकिन क्या ये चेहरों की तब्दीली तो नहीं? और रवि शास्त्री की वापसी क्या रंग दिखाएगी? खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का सलाम। पाकिस्तान सुपर लीग स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की तहकीकात के लिए कायम तीन रुकनी ट्रिब्यूनल ने शर्जील खान और खालिद लतीफ के मामले की समाअत मुकम्मल कर ली है और अब दोनों फरीकैन के तहरीरी दलाइल के बाद ट्रिब्यूनल 30 दिन में अपना फैसला सुना देगा। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफजुल हैदर रिजवी को जहमत दी और उनसे मेरा पहला सवाल था कि ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को अब काफ़ी वक्त हो चुका और कुछ हल्के ये ख्याल जाहिर कर रहे हैं कि किसी को बचाने के लिए किसी को कुर्बानी का बकरा ना बना दिया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा?
एक सवाल बार बार ये उठाया जा रहा है कि जिनको संभव एक डिफेंस दिया जा रहा है कि प्लेयर्स को किसी को बचाने के लिए कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात की जा रही है? तो आप जब भी ऐसी बात है, वैक्यूम में ऐसी बात नहीं करते। आप ऐसी बात अगर या तो है किसको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, नाम ले उनका, कौन से साहब हैं जिनको बचाने के लिए किया जा रहा है, और इन प्लेयर्स के साथ किसी की क्या दावत है, क्या दुश्मनी है कि इनको भी पकड़ा जा रहा है, जबकि वहाँ PSL में 100-150 प्लेयर थे, PCB, ICC, NCA वो सब एक प्लेयर के खिलाफ ही मतलब कोई महाज बनाएंगे, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है।
मेरा तफजुल हैदर रिजवी से अगला सवाल था कि स्कैंडल में ये बताया गया कि बरतानवी क्राइम एजेंसी ने ICC को मालूमात फरहम की, ICC ने ये मालूमात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दी, तो क्या ये मालूमात तहरीरी सूरत में थी या जबानी?
जो इन्फॉर्मेशन सारी होती है ये वर्बल शेयर होती है, क्योंकि रिटन में तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको रिटन में एक दूसरे के साथ शेयर करना इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी रिसीव हो रही होती है, जब तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती तब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्योंकि एक चीज ये भी है कि शर्जील खान साहब को ये लोग कहते हैं कि जब PCB को मालूम पड़ गया था कि शर्जील खान साहब बुकी से मिले हैं, खालिद लतीफ बुकी से मिले हैं, तो इनको पहले एक्शन लेके क्यों नहीं साइड लाइन किया गया? बात यह कि जब तक प्लेयर को मौका दिया जाता है आखिरी वक्त तक कि वो किसी गलत काम में ना करे, अगर उसने किसी से एग्री भी किया है तो उम्मीद की जाती है कि वो आखिरी वक्त तक अपने आप को अपने करियर को सेव करे और ऐसा कोई गलत काम ना करे।
मैंने तफजुल हैदर रिजवी से पूछा कि नेशनल क्राइम एजेंसी के अफसर एंड्रियो एवग्रेव ने ट्रिब्यूनल के सामने मजीद दो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नाम लिए हैं जिनका ताल्लुक बांग्लादेशी प्रीमियर लीग से जोड़ा गया है, क्या आप इसकी तस्दीक करते हैं?
अब मैं हमारी यारानी दोजख क्या बात बताऊं आपको, बस लोगों के नाम बीच में आते रहते हैं, चलते रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली लोग इसमें पहले भी 2010 के वाकयात के बाद भी प्लेयर्स ने सबक नहीं सीखा, इस तरह चलती हैं चीजें, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी PCB का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसके पास है, वो अगर उसको प्रोसेस करके आगे चलना चाहेगा तो ये वो आपको बता सकेंगे बेहतर के आगे क्या होगा।
वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफाइंग राउंड्स में पाकिस्तानी हॉकी टीम की इंतहाई मायूसकुन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हनीफ खान को हटाकर साबिक ओलंपियन फरहत खान को नया मैनेजर और हेड कोच मुकरर किया है। साथ ही ख्वाजा जुनेद भी कोच के ओहदे से हटा दिए गए हैं और सिलेक्शन कमेटी भी तब्दील कर दी गई है, जिसके सरबराह अब रशीद जूनियर की जगह हसन सरदार होंगे। मैंने इस बारे में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी शहबाज अहमद से बात की और उनसे पूछा कि क्या माजी की तरह इस मर्तबा भी इन तब्दीलियों को महज चेहरों की तब्दीली ही समझा जाए?
टीम मैनेजमेंट के हवाले से मेरी जो राय थी यही थी कि हमें लक ट्राई करनी चाहिए, किसी नई मैनेजमेंट को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से कोई बेहतर रिजल्ट नहीं आ सका, इसलिए उनको ट्राई किया गया है।
शहबाज अहमद से मेरा अगला सवाल था कि फरहत खान यकीनन एक अच्छे फॉरवर्ड थे, लेकिन कोचिंग का उनका ऐसा कौन सा तजुर्बा है जिसकी बुनियाद पर उन्हें हेड कोच बनाया गया है?
फरहत बड़े मशहूर हैं कि उनमें बड़ी फाइटिंग स्पिरिट है और प्रैक्टिकली वो थोड़े से डिफरेंट हैं। जो मुझे नजर आया इस टूर्नामेंट में जो हम हारे हैं उसमें मुझे टीम में स्पिरिट की भी कमी नजर आई है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है फरहत को सिलेक्ट किया है कि हम समझते हैं कि उसके आने से थोड़ी सी टीम में स्पिरिट ज्यादा आएगी और जज्बा ज्यादा आएगा।
मैंने नए हेड कोच फरहत खान से भी बात की और उनसे मेरा सवाल था कि आप इस नई जिम्मेदारी के लिए कितने तैयार हैं?
मेरे में जितनी सलाहियत है और जितनी आपकी जानता हूँ कोशिश करूंगा कि उनको उसको ट्रांसफर करूं उनमें, और उनमें जो है वो ये जो बुजदली का आंसर है, मतलब है डांस करने से घबराते हैं आगे जाने से, जो अपनी एशियन हॉकी स्टाइल है आपने सुना होगा कि जो ये लीग खेलने गए वहाँ पे भी जो कमेंटेटर्स थे वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान अपनी अच्छी पता नहीं क्यों नहीं खेलता। तो भाई पाकिस्तान की अच्छी तो डाज और शॉर्ट पासिस है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से उनको ये ट्रांसफर करूँ।
बात कोचिंग की हो रही है तो भारतीय क्रिकेट टीम को एक मर्तबा फिर रवि शास्त्री की शक्ल में एक ऐसा कोच मिल गया है जिसे कप्तान दोस्त कहा जाता है, मतलब ये कि वो कप्तान विराट कोहली के फेवरेट हैं। दूसरी जानी बीसीसीआई की अपनी सियासत है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अहवाल के साथ दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड तो है, मगर इसके फैसले किसी तमाशे से कम नहीं होते। अब भारतीय क्रिकेट टीम को ही लीजिए जो फिलहाल श्रीलंका का दौरा कर रही है और उसके चीफ कोच रवि शास्त्री हैं। उनके साथ कोचिंग स्टाफ में गेंदबाजी कोच भरत अरुण, सहायक कोच संजय बांगर और फील्डिंग कोच आर श्रीधर है। लेकिन इतना सब कुछ तय होने से पहले बहुत कुछ हो गया। दरअसल बीसीसीआई की सलाहकार कमेटी जिसमें सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण की तिकड़ी शामिल है, उसने रवि शास्त्री को चीफ कोच बनाने के अलावा साबिक तेज गेंदबाज जहीर खान को गेंदबाजी और दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रहे राहुल द्रविड़ को बल्लेबाजी सलाहकार बनाया था। लेकिन रवि शास्त्री इसके लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार रवि शास्त्री की ही चली और वो बॉस साबित हुए। पूरे मसले को लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज बीमन कहते हैं,
बहुत शर्मनाक सिचुएशन है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं जहीर खान और राहुल द्रविड़ की, जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स रहे हैं, और उनके साथ ऐसा व्यवहार करना मेरे ख्याल से सही नहीं था। मैं ये भी मानता हूँ कि जो कोच बनाए गए हैं उनको फ्रीडम होनी चाहिए कि अपना सपोर्ट स्टाफ खुद ढूंढे, लेकिन क्या अड़चन थी, क्या वजह थी कि आप क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ये दोनों नाम अनाउंस कर दिए और उसके बाद कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है COA उन्होंने कहा कि भाई ये नाम अनाउंस नहीं कर सकते हैं, ये तो बाद में हमारा निर्णय होगा। और इस खींचातानी में जो बेचारे फंसे गए हैं वो है जहीर खान और राहुल द्रविड़। ये बताता है किस तरह से इंडियन क्रिकेट का हाल है।
इससे पहले रवि शास्त्री को चीफ कोच बनाए जाने को लेकर भी बीसीसीआई की जल्दबाजी सबको हैरान कर गई। उनके नाम का ऐलान इसी महीने की 12 तारीख को रात 10 बजे किया गया। अब ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आधी रात को बीसीसीआई ने ऐसा कदम उठाया। एक और क्रिकेट एक्सपर्ट प्रदीप मैगजीन कहते हैं,
एक टीवी चैनल पे खबर चलती है जहाँ के क्रिकेट ऑफ कमेटी के जो एक बड़े प्लेयर हैं वो उनके एक्सपर्ट हैं, वहाँ पे खबर चलती है कि शास्त्री कोच बन गए हैं, फिर बोर्ड वाले कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फिर वही टीवी चैनल चलाता नहीं, अब 10 बजे ये खबर ब्रेक होगी और बाकी 10 बजे प्रेस रिलीज आता है। तो ये जिस तरीके से ये पहले से भी हैंडल हो रहा है और जिस तरीके से इसको मतलब मजाक की तरीके से हैंडल किया गया है, ये बोर्ड के लिए बड़ी शर्मनाक बात।
उधर बीसीसीआई के साबिक प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर के माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, लेकिन अनुराग ठाकुर से पहले के प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन और बीसीसीआई से जुड़े निरंजन शाह को नोटिस दिया है कि वो क्यों बीसीसीआई की आम बैठक में शामिल हुए। गौरतलब है कि बीसीसीआई में जो कुछ हुआ था उसकी वजह से एन श्रीनिवासन की बीसीसीआई से छुट्टी हुई थी। अयाज पेमन कहते हैं,
सुप्रीम कोर्ट को कड़ी निंदा करनी पड़ी श्रीनिवासन की और निरंजन शाह की कि ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं है बीसीसीआई के लिए या इंडियन क्रिकेट के लिए। लेकिन किस हद तक रोक सकते हैं, अगर केस पे केस चलता रहे और ये मामला सिर्फ लीगल इश्यू में बना रहे ना कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो नुकसान हो रहा है इंडियन क्रिकेट का।
बीसीसीआई की नजर में सचिन, सौरव, सहवाग, गांगुली को तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट की बीसीसीआई में इसलाह के लिए बनी कमेटी की भी शायद कोई अहमियत नहीं है, तभी तो यहां सब कुछ गोलमाल जैसा है।
One serve away from the title.
An ace from Federer. Champion for an eighth time.
रॉजर फेडरर विंबलडन में नई तारीख रकम कर चुके और अब उनकी ख्वाहिश एक बार फिर आलमी नंबर एक बनने की है। फेडरर ने रिटायरमेंट का इम्कान भी ये कहकर रद्द कर दिया कि उम्मीद है कि ये उनकी आखिरी ट्रॉफी साबित नहीं होगी। फेडरर ने अजराए तफन्नुन ये बात भी कही कि विंबलडन की जीत के बाद उन्हें 6 माह आराम कर लेना चाहिए। उनकी इस बात का पस मंजर ये है कि उन्होंने गुज़िश्ता साल 6 माह के लिए टेनिस से दूरी अख्तियार के रखी थी, लेकिन जब खेलने आए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीत लिया। और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद।
पाकिस्तान ने वर्ल्ड फाइव स्क्वाश सीरीज जीत ली। फैसला कुन मैच में फरहान महबूब ने मिस्र के करीम अल फतही को 3-0 से हराकर सीरीज जीत ली। हांगकांग और अमेरिका के खिलाड़ियों ने भी सीरीज में शिरकत की। 19वीं एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप पीट के रोस से इंडोनेशिया के शहर सोराबिया में शुरू हो रही है। इंडिया की क्रिकेट टीम इस हफ्ते श्रीलंका का दौरा कर रही है। वो इस दौरे पर श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट, 5 वनडे इंटरनेशनल और 1 ट्वेंटी ट्वेंटी मैच खेलेगी। टेस्ट सीरीज बुध के रोज से शुरू होगी। यूएई क्रिकेट टीम आजकल हॉलैंड का दौरा कर रही है। पहले 2 मैच वो जीत चुकी है। पहला मैच उसने 3 विकेटों और दूसरा 5 विकेटों से जीता।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।